ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः शिवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। किंचायाम किंचायाम राजर्षि अपत्यकामः प्रजां भवा दृशिं अशासनान् ईश्वरां आशिषां स्वर्ग अपवर्गयो अपि भवन्तुं भवन्तं उपधावति प्रजायां अर्था प्रत्ययो धनदम इवाधन फलीकरणम्। किंचायाम राजर्षि अपत्तकामः प्रजां भवा दृशिम अशासनान् प्रजां भवा दृशिम अशासनान् ईश्वरम् आशिषाम् स्वर्ग अपवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायाम् अर्थपत्ययो धनदम इवाधनः फलीकरणम्। शब्दार्थ किंच इसके अतिरिक्त अयम यह राजऋषि पवित्र राजा नाभि अपत्य कामः संतान का इच्छुक प्रजाम एक पुत्र भवादृशिम आपके ही सदृश आशासना आशायुक्त ईश्वरम परम नियंता आशीषाम आशीर्वादों का स्वर्ग अपवर्गयो स्वर्गलोक तथा मुक्ति का अपि यद्यपि भवन्तुं आपको उपधावति उपासना करता है प्रजायाम लड़के बच्चे संतान अर्थपत्य जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए, धनदाम दानी को इव सदृश अधन निर्धन पुरुष फलीकरणम थोड़ी सी भूसी, जो अन्न का भूसी होता है ना, चावल कूटने के बाद भूसी निकलता है या गेहूं कूटने के बाद भूसी निकलता है, उसको भूसा भी बोलते हैं। अनुवाद। हे ईश्वर, आपके समक्ष महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। भगवान, आपकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। पुत्रेक्षा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं और आप उन्हें कोई भी उच्चतम पद प्रदान कर सकने में समर्थ हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या मुक्ति लाभ। दोहराइए, हे ईश्वर, आपके समक्ष महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। भगवान, उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है, जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। पुत्र इच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं और आप उन्हें कोई भी उच्चतम पद प्रदान कर सकते हैं। चाहे वह स्वर्ग हो या मुक्ति लाभ। ये बात को महाराज नाभि के तरफ से जो यज्ञ के पुरोहित हैं वो लोग भगवान से कह रहे हैं। जब महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरु के साथ यज्ञ कर रहे थे पुरोहितों के साथ, तो यज्ञ के समय में ही भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो वहां जो यज्ञ करने वाले जो ऋत्विक थे, जो पुरोहित थे, उन पुरोहितों ने महाराज नाभि के तरफ से भगवान विष्णु से प्रार्थना किए और महाराज नाभि की जो इच्छा थी उस इच्छा को भगवान विष्णु से निवेदन किए। तो निवेदन स्वरूप में जो ऋत्विक जो पुरोहित हैं वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपके समक्ष महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। भगवान, उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। पुत्र इच्छा से ही वे आपकी उपासना कर रहे हैं और आप उन्हें कोई भी उच्चतम पद प्रदान करने में समर्थ हैं, चाहे वह स्वर्ग हो या मुक्ति लाभ। तात्पर्य, पुरोहित कुछ शर्मिंदा थे कि राजा नाभि ईश्वर से पुत्र का वर प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें स्वर्ग या वैकुंठ लोक भेज सकते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए और श्रेष्ठ वर मांगा जाए। वे कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। वे भगवान से कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगना चाहते। भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है धन, उत्तम कुल, सुंदर पत्नी तथा अनेक अनुसर, किंतु बुद्धिमान भक्त ईश्वर से ऐसी वस्तुओं की याचना नहीं करता। बस उसकी तो प्रार्थना है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कि त्वयि। वे ईश्वर की प्रिय सेवा में निरंतर लगे रहना चाहता है। वे न तो स्वर्ग चाहते हैं न भवबंधन से मुक्ति। यदि ऐसा होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कदापि यह न कहा होता, मम जन्मनि जन्मनि। जब तक कोई भक्त भक्त बना रहता है उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं रहता कि वह जन्म जन्मांतर जन्म लेता रहेगा अथवा नहीं। शाश्वत स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है श्री भगवान के धाम को वापस जाना। भक्त को भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं रहता। यद्यपि नाभि महाराज विष्णु जैसा पुत्र चाहते थे, किंतु ईश्वर के समान पुत्र इच्छा भी इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार है। शुद्ध भक्त तो ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लिप्त रहना चाहता है। इस श्लोक में महाराज नाभि के विषय में, उनकी इच्छाओं के विषय में जिक्र किया गया है। महाराज नाभि अग्निध्र के ज्येष्ठ पुत्र थे और अग्निध्र प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रियव्रत जब आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल में भजन करने के लिए चले गए, तो अपने बड़े पुत्र अग्निध्र को राज्य का भार सौंप दिए। ऐसा शास्त्र में कहा जाता है कि 50 वर्ष की आयु में जंगल में जाकर भजन करना चाहिए। पंचदशम वनम ब्रजेत, ये वैदिक परिपाटी है। प्रियव्रत महाराज ने वैदिक नियम का अनुसरण करते हुए भजन करने के लिए वन में गए थे। जैसा प्रहलाद महाराज भी शिक्षा में कहते हैं अपने पिताजी को कि वृंदावन में जाकर भजन करना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा काम है आत्म साक्षात्कार। इस जीवन से केवल इंद्रिय तृप्ति या घर में ही मृत्यु पर्यंत बने रहना, ये चतुर मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। जो बुद्धिमान होता है वो अंत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान की जिज्ञासा करता है, भगवान के विषय में उपासना करता है। इसलिए लोग 50 वर्ष में जंगल में जाते थे भजन करने के लिए। तो प्रियव्रत अपने पुत्र अग्निध्र को राज्य का भार सौंप दिए और अपने पिता के आदेश से अग्निध्र पितृवत प्रजा का पालन करने लगे। जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है, उसी तरह अग्निध्र अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रजा का स्नेहवत, जैसे पुत्र पिता अपने पुत्रों के प्रति बहुत स्नेहिल होता है, उसी तरह पालन करने लगे। उनके पास जो कुछ भी होता था, जो भी कर वसूल होता था, प्रजा के हित में खर्च कर देते थे। राजकोष में संग्रह नहीं रहता था। जैसे राजा रघु के राजकोष में ज्यादा कुछ संग्रह नहीं होता था, जो भी प्रजा से कर मिलता था सब प्रजा के हित में खर्च कर देते थे। एक बार उन राजा रघु के पास कौश नाम का ब्रह्मचारी गया था धन याचना के लिए। गुरुवर तंतु मुनि के को दक्षिणा स्वरूप देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए राजा रघु के पास जब जाता है कौश, तो देखा कि राजा उस समय गरीब थे, उनके पास कोई धन नहीं था, पूरा खजाना खाली था। महाराज रघु कौश को आए हुए देख करके उनका बहुत स्वागत किए, अपने राज सिंहासन पर विराजमान करके उनका पाद प्रक्षालन किए और फिर निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मचारी, आपके आने का क्या प्रयोजन है? साधु कोई प्रयोजन लेकर के ही जाते हैं, महत विचलनम निर्णाम। जैसे शास्त्र में कहा जाता है कि महान भक्त का जब कहीं प्रयाण होता है, कहीं जाते हैं, तो उनका महान उद्देश्य होता है। जैसे सिंधु नरेश जब जा रहे थे तो जड़ भरत से उनकी भेंट हुई, तो उस प्रसंग में राजा कहते हैं कि महद विचलनम निर्णाम गृहिणी दिनचेत शाम। जो घर गृहस्थी में फंसे लोग हैं, जिनकी चेतना घर गृहस्थी स्त्री सूत और धन इत्यादि के पोषण में ही, जिनका समय, जिनका बुद्धि लगा रहता है, वैसे लोगों के कल्याण के लिए महान भक्त लोग विचरण करते हैं। तो महाराज रघु कहते हैं कि आपके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, या तो हमारे जैसे घर गृहस्थी में जो बंध गए हैं, जो गृहासक्त हैं, वैसे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आपका आगमन हुआ है, या अपने गुरु बर्तंतु मुनि के आश्रम में कोई अभाव, गायों के लिए चरागाह में घासों की कमी हो गई है, या सरोवरों में पानी की कमी हो गई है, किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है? कौश्य राजा के बात को सुनकर गंभीर हो जाता है और कहता है कि हे राजन, मेरे आने का आगमन, मेरे आने का प्रयोजन जो है उस समय मैं आपसे नहीं कहना चाहता हूं। जैसे वर्षा, जैसे शरद काल का जो मेघ होता है उस समय चातक पक्षी उससे जल याचना नहीं करता है, क्योंकि उसमें जल नहीं रहता है। जल कब होता है? वर्षा के काल में। तो मैं देख रहा हूं कि आपके पास धन नहीं है, प्रमाण में आपके पास मिट्टी के सकोरे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, और आप कुशासन पर बैठे हैं, तो मैं क्या याचना कर सकता हूं? मैं गुरु बर्तंतु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के लिए आपके पास आया था, लेकिन इस समय आप धन रिक्त हैं। लेकिन राजा के बार बार आग्रह से कौश ने ये बात प्रकट की, अपनी इच्छा प्रकट की। राजा रघु उसी समय कहते हैं कि अब विश्राम करिए, जल अनुग्रहण कीजिए, अवश्य ही मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। और तुरंत राजा रघु कुबेर पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते हैं। रात्रि में अपनी चतुरंगनी सेनाओं को तैयार करके कुबेर पर जैसे ही चढ़ाई करने जा रहे थे, कुबेर उनकी सेवा, उनके समर्पण को देख करके उनके खजाना को स्वर्ण मुद्राओं से भर देते हैं। तो ऐसे राजा रघु, जिनके राज्य में प्रजा, गुरु, शिष्य सभी संतुष्ट थे, किसी को कोई वस्तु की कमी नहीं थी, राज्य में कहीं चोरी का नामो निशान नहीं था, जो वस्तु जहां है वहीं पड़ी रहती थी, घरों में कोई लॉक नहीं लगाते थे, आज से कुछ समय पहले लोग लॉक नहीं लगाते थे, या बैंक नहीं होता था, जब अंग्रेजी शासन हो गई तब लॉक हो गया, फिर बैंक हो गया, फिर भी चोरी और लूटमारी और बढ़ गई है। पहले कोई लॉक नहीं लगाता था, हर व्यक्ति जो है संतुष्ट रहता था, जिसके पास जो भी है उसी में संतुष्ट रहता था, जिसके पास नहीं भी रहता था वो भी संतुष्ट रहता था, संतुष्टो इन के नवा। तो राजा रघु के समय में कहीं चोरी होता नहीं था, कोई धन संचय करता नहीं था, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, ब्राह्मण दूसरे को दान दे देते थे, वो संग्रह नहीं करते थे, अति संग्रह न कर्तव्य, ये वैदिक सिद्धांत है कि ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, और जो ब्राह्मण होते हैं वो तो और भी संग्रही नहीं होते हैं, वो मधुकरी करके भोजन करते हैं और भजन करते हैं, भीख मांगी भोजन करे हिये जपे हरिनाम, अपने हृदय में हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं। तो यहां पर हमारे वैदिक इतिहास में अनेक बड़े बड़े राजाओं का इतिहास प्रस्तुत किया जाता है, उसी तरह से यहां राजा प्रियव्रत, आग्निध और उनके वंश परंपरा में इस राजा का इतिहास बताया गया है कि राजा किस तरह से, उसको अन्य वस्तु की कामना नहीं थी, केवल योग्य पुत्र की इच्छा थी, और वो भी पुत्र कैसा, भगवान जैसा, पुत्र हो तो भगवान जैसा। जैसे पूर्व काल में कश्यप और अदिति ने कामना किया था कि भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो, तो बहुत काल तक वो लोग तपस्या किए, बहुत काल तपस्या किए, तपस्या के उपरांत भगवान प्रसन्न हुए और कहे मेरे समान तो कोई पुत्र नहीं प्राप्त हो सकले, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान के समान कोई नहीं हो सकता है, न भ्यधिकः कुतन्य, भगवान के समान ही कोई नहीं हो सकता है, भगवान से अधिक कहां हो सकता है। तो भगवान बोले कि मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। कश्यप पदित महातप किन्हा तिनकह मैं पूर्व बर दिन्हा। तो वामन रूप में भगवान कश्यप और अदिति के पुत्र बन करके आए और इस तरह से फिर दशरथ और कौशल्या के यहां भी पुत्र बनकर आए, फिर देवकी वसुदेव के भी पुत्र बन, तीन बार उनके पुत्र बनकर आते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए पुत्र भी बन जाते हैं। जय जथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान जैसा पुत्र प्राप्त करना जबकि शास्त्र विरुद्ध नहीं है, शास्त्र अनुकूल ही है। अगर किसी को पुत्र भी चाहिए तो भगवान की उपासना कर सकता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति, कोई भी कामना हो तो भगवान की उपासना कर सकता है। और गृहस्थों के लिए उचित है कि उसे योग्य पुत्र प्राप्त हो। चाणक्य पंडित भी कहते हैं पुत्रार्थे कृते भार्या, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति घर गृहस्थी में जाता है तो उसका पहला उद्देश्य होता है धार्मिक कार्यों को संपन्न करना और अतिथि की सेवा करना। हर गृहस्थ के यहां अतिथि आते हैं, अतिथि की सेवा करने के लिए कुछ धन उपार्जन करना और योग्य पुत्र प्राप्त करना। ऐसे गृहस्थ जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन शास्त्र में कहा गया कि जो गृहस्थ बनता है उसके लिए सुख के छह साधन हैं। महाभारत में कहा गया कि अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सस्य पुत्र अर्थ करी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस जीव लोक में सुख के छह साधन हैं गृहस्थ के लिए। क्या है? अर्थागमो, नित अर्थ का आगमन हो, धन का आवागमन हो। जैसे बिजनेस है उसमें हमेशा पैसा का आगमन होता है। अगर गृहस्थ है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो गृहस्थ जीवन में वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। पहले धन जरूरी है। धना धर्म ततः सुखम, धन से धर्म कर सकता है, धर्म से सुख प्राप्त कर सकता है। धन नहीं रहेगा तो कैसे अपने परिवार का भी पालन नहीं कर सकता है। जो गृहस्थ धन का सदुपयोग करते हैं, अतिथि साधु भगवान की सेवा करते हैं, वो धन जो है उनके भक्ति में बाधक नहीं होता है। और जो धन से इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनको डुबा ले जाता है। धन जो है पानी की तरह है और घर जो है नाव की तरह है। ये कहा जाता है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उली चिए यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ने लगे, अब नाव में मान लीजिए जा रहे हैं बोट में, बोट में लोग जाते हैं ना, बड़ा बड़ा बोट में हजारों हजार लोग सवार होकर जाते हैं, जैसे टाइटैनिक डूब गया। वैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि एक बोट डूब गया, इतने लोग डूब गए। उत्तरी बिहार में हम हमेशा देखते हैं कि रोज हफ्ते में एक दो नाव डूबती है उत्तरी बिहार के उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है और नाव से लोग नदी क्रॉस करते हैं और कभी कभी नाव में इतने लोग सवार हो जाते हैं कि नाव डूब जाती है। उसी तरह घर भी नाव की तरह है। गृहस्थ लोग घर में सवार होकर के भवबंधन से पार होते हैं। जो गृहस्थ हैं, जो घर में भगवान का भजन करते हैं और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करते हुए चलते हैं, तो नाव की तरह उनको पार उतार देता है। और जो घर को केवल इंद्रिय तृप्ति का मार्ग बनाकर चलते हैं, तो उनको डुबा देता है। इसलिए घर में अगर संपत्ति बढ़ने लगे तो उसको दान देना चाहिए, और दान देना चाहिए तो सत्पात्र को, सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र को दान देंगे तो ठीक है। वृथा वृष्टि समुद्रेशु, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। नीति शास्त्र में कहा गया कि दान किसको देना है। जैसे वर्षा समुद्र में होती है तो समुद्र में जल का क्या अभाव है। वृथा वृष्टि समुद्रेशु, समुद्र में वर्षा व्यर्थ है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। कोई व्यक्ति खूब खा लिया है, यहां तक आकंठ भोजन कर लिया है, और उसको बोलिए मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूं, तो उसके लिए व्यर्थ है, वो खा लिया है। और कोई भूखा है, मान लीजिए दो दिन से नहीं खाया है या दिन भर नहीं खाया है, उसको अगर भोजन देंगे तो उसके लिए अमृत है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, और समर्थ व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। जैसे कोई बड़ा अमीर व्यक्ति है, उसको आप 2 रुपया देंगे, मैं ये ले लीजिए आपको दान देता हूं। मुकेश अंबानी का बोलेंगे 100 रुपया का दान आपको देता हूं, तो वो व्यर्थ है, वो दान व्यर्थ है। समर्थ व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। किसको दान देना है, जो आवश्यकता, जिसको आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए खाने को नहीं है, उसका कपड़ा नहीं है, अभावग्रस्त है, वैसे व्यक्ति को दान देना, 1 रुपया भी दान देना उसका लाभ है। और समर्थ है धनी व्यक्ति को, आप 1,00,000 रुपया भी दान देते हैं तो व्यर्थ है। इसलिए पात्र को दान देना है, देश काल और पात्र। दान कहां क्या देना है, कब देना है, किसको देना है, ये कॉमन सेंस से व्यक्ति को समझना चाहिए। और वृथा दीपो दिवापिच, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। दिन में दीपक की क्या आवश्यकता है। जब सूर्य का प्रकाश है तो कोई कहे कि मैं एक दीपक जला लूं, दीपक के प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। वृथा दीपो दिवापिच, सबसे बड़ा दीपक है, घर घर में प्रकाश है। भगवान ने ऐसा एक ट्यूबलाइट बनाया है जो घर घर तक, जन जन तक, हर व्यक्ति के यहां प्रकाश है। और जब देखिए वो दीपक आपके सामने प्रस्तुत है, मध्यान्ह में आपके सिर के ऊपर खड़ा है, सूर्यास्त में भी आपके सामने है, सूर्योदय में भी आपके सामने है, भगवान ने ऐसा ट्यूबलाइट बनाया है। हम कहते हैं कि बंबई में 1 ट्यूबलाइट बना दो, इतना केबल, इतना ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर, इतना ट्रांसमीटर बनाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को एक ऐसा ट्यूबलाइट बना देना चाहिए, ऐसे जगह पर, ऐसे सेंटर में रखना चाहिए कि हर बिल्डिंग में प्रकाश हो जाए। भगवान ने तो 1 ट्यूबलाइट बनाया है, हर देश में प्रकाश हो रहा है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, चाइना में, श्रीलंका में, भारत में, कई कंट्री में प्रकाश हो रहा है। जैसे अमेरिका में अभी अंधेरा होगा, लेकिन आधा से अधिक कंट्री में प्रकाश होगा, दिन होगा। ऐसा कोई बना सकता है, केवल भगवान बना सकते हैं। हम बहुत बनाएंगे तो 1 ट्यूबलाइट में 1 घर में प्रकाश दे सकते हैं। तो दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तो यहां पर नाभि के तरफ से पुरोहित लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इतना विशाल यज्ञ का आयोजन करके आपसे पुत्र इच्छा की कामना की है, यह बहुत तुच्छ है देखा जाए तो। इतना बड़ा यज्ञ लेकिन कामना का एक पुत्र चाहिए। उसी तरह है जैसे कोई धनी व्यक्ति के पास थोड़ा सा 1/4 किलो चावल मांगने के लिए जाता है। कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति के पास कोई जाए और कहे क्या चाहिए बोलो, भाई एक बीड़ी दे दीजिए, एक सिगरेट दे दीजिए। अरे इतना बड़ा व्यक्ति के पास गए हो तो इतना मांग लो कि जीवन में फिर किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना हो। यहां कहा गया है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। बलि महाराज जैसे बामन देव गए, बामन अवतार में भगवान बामन बलि के पास गए और कहे, यज्ञ मंडप में जब गए तो उनका तेज से सभी लोग खड़े हो गए, कोई भगवान सूर्य देव आ गए। जैसे सूर्य में तेज होता है वैसे बामन देव जब बलि के यज्ञ में प्रस्तुत हुए तो सारे पुरोहित जजमान समय सब लोग खड़े होकर उनका स्वागत किए, साधुवाद किए, जबकि बामन रूप में थे, बहुत बटुक रूप में थे, लेकिन उनका ऐसा तेज था मानो दसों दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। तो बलि महाराज अपने यज्ञ में बामन देव को आकर देखा, समझ गए कि बहुत तेजस्वी ब्राह्मण का पुत्र है। जो ब्राह्मण का पुत्र होता है उसमें भी ब्रह्म तेज होता है। जैसे समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी 5 वर्ष की अवस्था में साप दे दिया और साप लागू हो गया, कि ब्रह्म तेज ब्राह्मणों में रहता था, चाहे वो बच्चा हो फिर भी ब्रह्म तेज रहता था। तो बलि महाराज उनका बहुत स्वागत किए, बोले कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आपको क्या चाहिए। तो बामन रूप में भगवान कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज कहते हैं 3 पग क्या करोगे, मांगो मुझे कोई तुम्हें बड़ा राज्य दे सकता हूं, बड़ा साम्राज्य दे सकता हूं, किसी देश का राजा बना सकता हूं, 3 पग में क्या करोगे, इतना ही नहीं मुझे 3 पग ही चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि तुम मेरे पद का भी थोड़ा विचार करो कि किसके पास आए हो, अगर मुझसे 3 पग भूमि मांगते हो तो मेरी बदनामी होगी, तुम इतना मांग लो कि फिर जीवन में कभी कमी न महसूस हो। अगर मांगने आए हो तो मांगो, उचित मांगो, तुम्हारी बुद्धि बच्चे की तरह है, तुम्हारी बुद्धि ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम्हें मांगने नहीं आता, ब्राह्मण मांगने में बहुत दक्ष होते हैं, तुम भी मांगना सीख लो पहले। लेकिन बलि महाराज कहते हैं कि बामन देव कहते हैं नहीं नहीं मैं इतिहास पुराण जानता हूं, मुझे ज्यादा संग्रह नहीं करना है, ये थोड़ा ही चाहिए। भगवान बहुत चलाकी से बोल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि महाराज सब कुछ देने के लिए तैयार थे, भगवान ऐसा कपट में क्यों बोल रहे थे। अगर कहते कि मैं भगवान हूं तो बलि महाराज सब कुछ दे सकते थे, लेकिन भगवान ऐसा कपट क्यों किए, के पीछे क्या रहस्य है। तो भी उनके कपट को बलि जान गए कि ये भगवान है, नारायण है, जगदीश्वर है, फिर भी बार बार कहने पर भी वो 3 पग ही लेना चाहते थे। तो बलि महाराज कहे कि बड़े बड़े असुरों से मैं 3 पग भूमि दे देता हूं नपवा करके। बोले नहीं, मैं इन्हीं पैरों से मापना चाहता हूं, मैं असुरों के द्वारा नहीं मापवाना चाहता, मैं अपने पैर से ही 3 पग भूमि लेना चाहता। अन्य बलि महाराज ने स्वीकार कर लिया। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि नाभि महाराज विष्णु जैसा पुत्र चाहते थे, किंतु ईश्वर के समान पुत्रेक्षा भी इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार है। शुद्ध भक्त तो ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लिप्त रहना चाहता है, शुद्ध भक्त को नहीं चाहिए, वो जानता है कि स्त्री पुत्र परिवार से भी आसक्ति होती है और दुख का कारण होता है। जो अपने ए धन जवमन पुत्र परिजन इते किया छे परती तीरे, मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख होता है अपने स्वजनों से, अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने धन से, अपने घर से, सबसे ज्यादा कष्ट होता है। इसलिए भक्त लोग नहीं चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का कोट करते प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है धन, उत्तम कुल, सुंदर पत्नी तथा अनेक अनुचर। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है बोलता है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र की यह नीति है कि जो गृहस्थ होते हैं उनको धन की आवश्यकता होती है, ज्यादा नहीं तो कम से कम काम चलाने भर उतना धन होना चाहिए जितने में वो परिवार का भरण पोषण कर सके। अर्थागमो नित्यम, नित्य धन की उपलब्धि हो और स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हो, कोई रोग न हो। अगर गृहस्थ बना है रोगी है तो वो गृहस्थ जीवन सुख में नहीं होता है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, नित्य निरोग रहे, कोई बीमारी न हो। प्रिया च भार्या, और उसकी स्त्री प्रिय हो और अनुकूल हो और आज्ञाकारिणी हो। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सस्य पुत्र, पुत्र आज्ञाकारी हो, पुत्र भी आज्ञाकारी हो, अर्थ करी च विद्या, और वो भी अर्थ उपार्जन करने लायक विद्या जानता हो, अनर्थ करी नहीं अर्थ करी, अच्छा विद्या जानता हो, विद्वान हो। चाणक पंडित कहते हैं कि माता अस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। अगर गृहस्थ कोई है तो उसकी पत्नी अगर अनुकूल नहीं है, घर में मां भी नहीं है, तो उसके लिए घर और वन दोनों एक समान है। यथा अरण्यम तथा गृहम, माता अस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी, स्त्री हो तो अनुकूल हो और प्रिय वादिनी हो और उसका प्रिय करने वाली हो। स्त्री ऐसी ना हो कि उसके साथ कपट करे या उसको जान से मार दे। चाणक पंडित और एक जगह कहते हैं कि ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। कौन कौन शत्रु होते हैं? तो ऋण करता पिता शत्रु, पिता है बहुत कर्ज ले लिया है, इतना कर्ज ले लिया है कि उसका पुत्र कमाते कमाते मर जाएगा लेकिन भर नहीं पाएगा, रोज मांगने के लिए दो चार आए रहेंगे, इतना ये दे दो ये दे दो। तो पिता शत्रु है, ऋण करता पिता शत्रु। माता च व्यभिचारिणी, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मां थी दूसरी शादी कर ले, शादी हुआ पुत्र भी हुआ पुत्रियां भी हुई हैं, बहू भी आ गई है फिर भी दूसरी शादी कर लेती, व्यभिचारिणी, वो मां भी शत्रु है। और रूपवती भार्या शत्रु, और बहुत सुंदर स्त्री भी शत्रु है, बहुत सुंदरी स्त्री है तो उसके चलते भी मर्डर हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो सुंदर स्त्री से विवाह करना चाहते थे तो उनके पिताजी ने मना कर दिया, बोले नहीं, बहुत सुंदर स्त्री से विवाह करना भी भक्ति के अनुकूल नहीं है, फिर व्यक्ति को वैराग हो ही नहीं सकता है। अगर थोड़ी स्त्री कुरूप हो तो वैराग जल्दी हो सकता है। वैराग लेने के लिए अच्छा है कि स्त्री उसके अनुकूल न हो, अगर उसके अनुकूल हमेशा रहती है, हमेशा सुंदर कार्य करते हो, वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। नीति है, नीति को हर पहलू पर हम सही नहीं उतार सकते हैं, एक सामान्य नीति है कि रूपवती भार्या शत्रु। पहले जैसे अहल्या बहुत सुंदरी थी तो इंद्र आकर के उसके साथ भोग किए, या पहले का भी इतिहास है कि पहले राजा लोग किसी की सुंदर स्त्री को उठा ले जाते थे, ऐसा होता था, या सुंदर स्त्री है तो लोग उसके पति को मार देते थे। व्यवहारिक जीवन में कभी कभी ऐसे असंगत होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसका निराकरण और सच्चाई सामने आता है। तो जहां बिल्कुल प्रतिकूल है, स्त्री भी लड़के भी सब तो जंगल है। जैसे जंगल में बाघ शेर रहते हैं, जीवन का हमेशा खतरा बना रहता है, उसी तरह घर में भी उसको खतरा बना रहता है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जैसे घर है, कैसा घर है जैसा जंगल है, बल्कि जंगल थोड़ा सेफ है, बाघ सामने आता है तब गुराता है। तो एक बार राधा रमण महाराज प्रश्न किए कि जब घर और वन दोनों समान है तो वन जाने की क्या जरूरत है, यथारण्यम तथा गृहम, घर भी वन जैसा ही है तो वन जाने की क्या जरूरत है। इसका अर्थ है कि वन से भी ज्यादा डेंजरस घर है, दोनों है लेकिन घर से अच्छा वन है, इसलिए वनम गतो में हरिमाश्रय, तब वन में जाकर भगवान का आश्रय लेकर भजन करना चाहिए। तो नाभी महाराज के इस शिक्षाओं पर ऐसे पुरोहित लोग खेद व्यक्त कर रहे थे कि देखो इतना बड़ा यज्ञ किया है, इसको आत्म साक्षात्कार का पथ पर चलना चाहिए, इतना बड़ा यज्ञ से तो वैकुंठ प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये एक तुच्छ वस्तु मांग रहा है। जैसे कोई बहुत परिश्रम करके खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत वर्षों से पहाड़ का खुदाई कर रहा है और क्या प्राप्त, एक चुहिया निकली। इतना बड़ा यज्ञ किए हैं लेकिन मांग क्या रहे, एक पुत्र मांग रहे हैं। इनको तो वैकुंठ भी सुलभ है, स्वर्ग का लोक भी सुलभ है। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग अपवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति, इनको तो मुक्ति पथ का अनुसरण करना चाहिए। पुरोहित लोग कहते हैं कि ये वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अनाज के बदले भूसी लेता है, अनाज को फेंक दे और भूसी को ले ले, या हीरा को छोड़ करके कांच को चुन रहा हो। जैसे चावल फटकने के बाद जो भूसी होता है वो लेकर घर में आ जाए, ये परम उद्देश्य नहीं है। इस यज्ञ का परम उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां पर कि भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। हे ईश्वर, आपके समक्ष महाराज नाभि हैं, जिनके जीवन का परम लक्ष्य आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना है। भगवान, उसकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो एक अत्यंत धनवान पुरुष के पास थोड़ा सा अन्न मांगने के लिए जाता है। भगवान तो सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कामद। जैसे आप चित्रकूट में जाएंगे तो कामदगिरी है, जिसकी परिक्रमा करने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री राम 12 वर्ष चित्रकूट में रहे तो कामदगिरी की जो भी परिक्रमा करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवान समस्त कामनाओं के देने वाले हैं। ऐसे भगवान से कोई एक छोटी वस्तु मांगता है तो मूर्ख है। जैसे कोई कामधेनु को छोड़ करके एक बकरी की सेवा करता है, या गंगा को छोड़ करके कूप का सेवन करता है। परम गंग को छाड़ी महातम दुर्तम कूप खनावे, दूर जाकर के कुआं खोदता है पानी के लिए, गंगा के किनारे है। वैसे भगवान श्री हरि जो समस्त वरों को देने वाले हैं, वरदाइयों में सबसे श्रेष्ठ हैं, हर वस्तु को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति उनसे कुछ नहीं मांगता है, छोटी वस्तु मांगता है। जैसे कामधेनु गाय है, समस्त कामनाओं कुछ भी दे सकती है, लेकिन कामधेनु का सेवन न करके बकरी पालता है। जैसे मान लीजिए कामधेनु गाय है किसी के पास, गाय की उपेक्षा करके एक बकरी पालता है तो वो मूर्ख है। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्तम कूप कनावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। छेरी मतलब जो बकरी होती है उसको छेरी भी बोलते हैं, और बकरी का भी एक गले में भी एक अस्तन होता है, वो अस्तन से दूध निकालना चाहता है। एक गले में अस्तन होता है, बकरे के गले में भी एक अस्तन होता है। यहां अगर बकरी के गले का अस्तन का कोई सेवन करता रहे हजारों वर्ष, हजार वर्ष तो बकरी की आयु नहीं होती है, सौ वर्ष, एक वर्ष भी अगर कोई सेवा करता रहे तो दूध नहीं प्राप्त कर सकता है। से भगवान की उपासना करके कोई मांगना ही है तो उसको सर्वोच्च वर क्या है जिसमें सब कुछ समाहित है, सर्वोच्च वर है कि भगवान को प्रसन्न करके या तो भगवान से कुछ ना मांगा जाए, और मांगना ही है तो जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवान के धाम को जाना। नहीं तो चेतन महाप्रभु कहते हैं कुछ ना मांगा जाए, नहीं मांगना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि भगवान हमारे इच्छाओं को जानते हैं, भगवान जानते हैं कि इसको क्या चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात भक्ति हेतुकित। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, और मांगना है तो केवल सेवा मांगना चाहिए। जो भक्त शुद्ध भक्त होते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, बल्कि भगवान देना भी चाहते हैं तो नहीं लेते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, भगवान की सेवा के अतिरिक्त भक्त कुछ नहीं चाहता है। सृष्टि सालोक सामीप्य सारूप्य सृष्टि ब्रह्म एकत्व च दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान देते हैं फिर भी नहीं चाहते हैं भक्त लोग। वो जानते हैं कि भगवान जानते हैं उन क्या जरूरत है, जैसे डॉक्टर जो है रोगी का नब्ज जान जाता है, डॉक्टर जो होता है रोगी का नब्ज पकड़कर समझ जाता है कि इसको क्या देना है, इसको कौन सा टॉनिक देना है, क्या अभी देंगे तो स्वस्थ हो जाएगा। वैसे भगवान हमारे विषय में जानते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान को इतना जरूर सहानुभूति है या भक्त के प्रति इतना जरूर प्रेम है कि वो हमेशा उसका कल्याण चाहते हैं, और क्या कब देना है उनको मालूम है, हमें मालूम नहीं है। रोगी को क्या देना है वैद्य जानता है। तो भगवान से जो शुद्ध भक्त हैं कुछ नहीं मांगते हैं, जबकि भगवान देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, भगवान कंजूस नहीं है, वो सब कुछ देते हैं। भगवान सबसे उदार हैं, भगवान इतने उदार हैं कि कोई एक तुलसी दल देता है तो भी उसके बदले में असंख्य अपना ऐश्वर्य दे देते हैं। तुलसी दल मातृणम जलस चुलके नवा, भगवान के पास कोई अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त के प्रेम का सौहार्द करते हैं, प्रतिदान करते हैं। कोई थोड़ा जल देता है तो भगवान उसके बदले में अपना अनंत ऐश्वर्य दे देते हैं। तो ऐसे भगवान से भक्त लोग मांगना नहीं चाहते हैं, जानते हैं कि भगवान देते हैं। तो आगे विस्तार और इसका जो लिंक है आप अगले दिन सुनेंगे, किस तरह से नाभि महाराज और मेरु के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ देव आए, जो भगवान के शक्तावेश अवतार में है। भगवान अपने भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो नाभि के पुत्र रूप में स्वयं भगवान ऋषभ देव के रूप में आते हैं, भगवान अपने भक्त के मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ठीक। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।